मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 20 दिसंबर 2018 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कल के लाइफ मैनेजमेंट में हम ऊर्जा पर बात कर रहे थे और ऊर्जा के तहत मैंने स्पेशली जिस बात पर जोर दिया था वह यह कि ऊर्जा दिखाई नहीं देती। अब इसी बात को मैं थोड़ा सा व्यावहारिक स्तर पर आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं। देखिए, अगर मैं ये कह रहा हूं कि ऊर्जा दिखाई नहीं देती सामान्य तौर पर, तो इसका मतलब है कि वह इतनी सूक्ष्म है कि उसे हमारी आंखें देख पाने में असमर्थ हैं। हमारी आंखों की क्षमता से वह परे है। ये बात अलग है कि आप माइक्रोस्कोप लगा करके उसे देख सकते हैं, लेकिन हमारी आंखों में वह क्षमता नहीं है। तो ठीक है, प्रकृति ने हमें जिस तरह की क्षमताएं दी हैं, हमारी वह सीमाएं हैं। हमें अपनी उन्हीं सीमाओं में रहकर काम करना होता है और उन्हीं सीमाओं में हम काम करते भी हैं, लेकिन मनुष्य की यह बहुत बड़ी विशेषता है कि वह इन सीमाओं से परे भी जा सकता है, इन सीमाओं से परे। और जब हम इन सीमाओं को तोड़कर इससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो इसे ही आप कह लीजिए कि हम सूक्ष्मता में प्रवेश कर रहे हैं। हम ऐसी निर्गुणता में प्रवेश कर रहे हैं जहां कोई आकार नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई मर्यादाएं मतलब मेड़ नहीं, जहां पूरी तरह से खुलापन है और अनंत का विस्तार है, क्योंकि वहां कोई बाधा है ही नहीं। इसे ही अब आप नाम दे सकते हैं व्यावहारिक स्तर पर सूक्ष्मता। सूक्ष्म यानी कि छोटा, छोटा से छोटा से छोटा से छोटा, इतना छोटा कि हम उसे भी नहीं देख सकते, लेकिन वो अस्तित्व में है। हम कहते हैं परमाणु बम। तो ये परमाणु बम क्या है? अब आप देखिए कि इससे पहले भी बम बने, लेकिन परमाणु बम की ताकत बहुत अद्भुत है। उसके विनाश लीला को 1945 में जापान ने महसूस किया है और दुनिया ने देखा है। ये परमाणु परम अणु, अणु का मतलब है छोटा से छोटा हिस्सा, पदार्थ का सूक्ष्मतम हिस्सा, परम अणु, छोटा से छोटा अणु। और देखिए कि उसमें कितनी ताकत है कि जब वो विस्फोट होता है तो उसके जैसा बम विस्फोट की क्षमता, उसके जैसी बम विस्फोट की क्षमता दूसरे किसी में नहीं होती। फिर आप और भी शब्दों पर जाइए, फोटोन। ये फोटोन क्या है? ये फोटोन रंगों की सबसे सूक्ष्मतम, तरंगों की सूक्ष्मतम कण आप कह सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी, ये नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? यानी कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो एकदम सूक्ष्मतम है। इसका मतलब यह हुआ कि विज्ञान के स्तर पर हम धीरे धीरे भौतिक जो हमें दिखाई दे रही हैं उनसे सूक्ष्मता की यात्रा कर रहे हैं जो दिखाई नहीं दे रही हैं, राइट? और जो दिखाई नहीं दे रही हैं उसका फिर एक स्तर यहां तक पहुंचता है कि वे चीजें केवल हमारे महसूस करने में तो प्रकट हो सकती हैं, लेकिन वैसे हमें दिखाई नहीं दे सकती। यानी कि हम उसे अनुभव के स्तर तक, जीवन के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ले आते हैं। व्यवहार के रूप में अगर आप इसे देखें तो जैसे मान लीजिए कि एक लोहे की आप छड़ लीजिए, मोटी छड़ लीजिए, और उसे अपने शरीर के किसी भी हिस्से में चुभोइए, पीठ में चुभोइए, हाथ पर चुभोइए, देखिए कि वो आपके शरीर के कितने अंदर के हिस्से तक वो घुसता है या कितना आपको दर्द पहुंचा सकता है। मोटी छड़ की जगह आप उसे थोड़ी सी पतली कर दीजिए और पतली कर दीजिए और पतली करते करते उसे सुई के लेवल पर ले आइए, उसी छड़ की सुई बना दीजिए। यानी कि आप अब उसे और ज्यादा सूक्ष्म करते जा रहे हैं। अब वो एकदम नुकीली हो गई है और अब आप उसके नुकीलेपन को उसी शरीर के उसी हिस्से पर लगाइए जहां आपने छड़ को लगाया था। अब इन दोनों के प्रभाव के अंतर को महसूस कीजिए। आप महसूस करेंगे कि जब वो छड़ मोटा था, बहुत बड़ा था, बड़ा होने पर थोड़ा सा डरावना भी लगता है, तब उसका उतना इंपैक्ट नहीं हुआ जितना कि ये सूक्ष्म अपना इंपैक्ट डाल रही है। यह हालांकि देखने में डरावनी नहीं लग रही है, प्यारी सी ही लग रही है, और उस एक क्षण से आप हजारों इस तरह की पतली पतली सुइयां बना सकते हैं, लेकिन इसके एक सुई में जितनी ताकत है उतनी ताकत उस पूरे के पूरे एक क्षण में भी नहीं है। क्षण का यहां मतलब रॉड कह लीजिए, नहीं है। इसका मतलब हुआ कि फिर से यह बात सिद्ध होती है कि जो चीज जितनी सूक्ष्म होती है वह उतनी अधिक प्रभावशाली होती है। दोस्तों यह सच है कि वह उतनी अधिक प्रभावशाली होती है। देखिए कला के क्षेत्र में आप थोड़ी सी अपनी निगाह दौड़ाएं। स्थापत्य कला, जिसे आप कह लीजिए कि भवन निर्माण की कला है, हम भवन देखते हैं, नो डाउट कि भवन देखने के बाद भी हमारी सौंदर्य चेतना जागृत होती है, हम उससे प्रभावित होते हैं कि वाह क्या शानदार मकान है, क्या शानदार नक्शा है, क्या कसीदेकारी है, हम प्रभावित होते हैं। ठीक है, ये प्रभाव का एक स्तर हुआ, राइट। इसके बाद फिर हम मूर्ति कला में चले जाते हैं, वह भी भौतिक स्वरूप ही है लेकिन स्थापत्य से थोड़ा सा सूक्ष्म है, छोटा है। तो मूर्ति कला में ज्यादा बारीकियां हैं, है ना, आंख दिखाई गई, आंख की पलकें भी दिखाई गई हैं, नाखून दिखाए गए हैं, ज्यादा छोटा है रूप है स्थापत्य कला की तुलना में। तो अब आप देखिए कि मूर्ति कला का जो सौंदर्य है वो हमें ज्यादा अपील करता है, हमें ज्यादा प्रभावित करता है। चलिए अब हम मूर्ति कला से फिर थोड़े से और उस पर आ जाते हैं, चित्रकला पर चलिए आ जाते हैं। अब आप देखेंगे कि जो चित्रकला है वो मूर्ति कला से भी अमूर्त है, यानी कि सूक्ष्म है। अमूर्त तो नहीं कहेंगे, तुलनात्मक दृष्टि से आप कह सकते हैं, लेकिन वो मूर्ति कला की तुलना में सूक्ष्म है। तो चित्रकला आपको और ज्यादा प्रभावित करती है, और ज्यादा प्रभावित करती है, राइट। इसके बाद आप आ जाइए नृत्य कला। नृत्य, अब आप देखिए कि नृत्य करते हुए आप किसी को देखिए या एक्टिंग करते हुए, अभिनय करते हुए आप किसी को देखिए तो डेफिनेटली हम उससे प्रभावित होते हैं, नृत्य से प्रभावित होते हैं डेफिनेटली। उनकी कलाकारी है, उनके कार्य या हाव भाव मुद्राओं में एक रिदम है, लय है। अब वो लय को हम महसूस कर सकते हैं, बस दैट्स ऑल। तो वो लय जो है वो सूक्ष्म है लेकिन शरीर के माध्यम से वो व्यक्त हो रही है, गायन शरीर के माध्यम से व्यक्त हो रहा है। तो बट नेचुरल है कि ये जो नृत्य कला है हमें अब ज्यादा प्रभावित कर रही है। लेकिन अब नृत्य को आप संगीत में बदल दीजिए। संगीत में एक व्यक्ति बैठा हुआ है और गा रहा है, अब वो नृत्य की जो भाव भंगिमाएं चेष्टाएं पद संचालन हस्त संचालन ये सब गायब है गाने में। ठीक है, थोड़ा बहुत भले ही हो रहा हो, एक गायक आराम से बैठकर गा रहा है, इसका प्रभाव और ज्यादा है। चलिए कोई गा भी नहीं रहा है, केवल बजा रहा है, तो अब वो मुद्राएं भी खत्म है। देखिए गाने में तो मुद्राएं होती है, आप देखिएगा कि गाने वाला हाथ चलाएगा, थोड़ी सी हल्की सी शरीर में हरकत भी करेगा, है ना, चेहरा ऊपर है नीचे है, उसके चेहरे पर भी आपको गायन के जो भाव होते हैं उसके अनुकूल उतार चढ़ाव दिखाई देंगे। लेकिन अब जो केवल वादन हो रहा है, केवल म्यूजिक है, वहां तो कुछ भी नहीं है, एक वाद्य यंत्र है और बस वो बज रहा है, बजाने वाला बजा रहा है और उससे धुन उभर रही है। आप देखते हैं कि इस म्यूजिक का इंपैक्ट गायन से भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। ये संगीत का प्रभाव है। अब आपने देखा कि धीरे 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 हम सूक्ष्मता तक उतरते चले जा रहे हैं और ये संगीत आगे चल करके आप देखिए कि ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम बन गया। इतना ज्यादा इसमें प्रभाव है कि इसके माध्यम से आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, जिसे आप सूफी संगीत या सूफी गायन या भक्ति गायन या यूं कह लीजिए कि चलिए भजन कीर्तन ही सरल शब्दों में कह लीजिए, उसको ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम बना दिया गया। ये सारी बातें क्या सिद्ध कर रही हैं? ये सारी बातें केवल यही सिद्ध कर रही हैं कि किस तरीके से जब हम बहुत बड़े से सूक्ष्मता की ओर यात्रा करने लगते हैं तो उन चीजों का इंपैक्ट लगातार हमारे ऊपर बढ़ता चला जाता है। मित्रों, क्या आप मुझे अपनी इन्हीं बातों को फिलोसफिकल लैंग्वेज में कहने की इजाजत देंगे? और अगर आप इजाजत दे रहे हैं तो वह वाक्य होगा कि यही है भौतिकता से आध्यात्मिकता की यात्रा। यानी कि हम ये जो सब कुछ दिखाई दे रहा है, जो भौतिक जगत है, इस भौतिक जगत की यात्रा, यहां से हमने यात्रा शुरू की है और धीरे 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 हम अंतः चेतना की स्थिति तक पहुंच रहे हैं। उस यात्रा का जो समापन हो रहा है हमारे मन में हो रहा है, या यूं कह लीजिए हमारे हृदय में हो रहा है, और यदि आप विश्वास करते हो तो आप कह सकते हैं हमारी आत्मा में हो रहा है। और जब वह यात्रा आत्मा तक पहुंचती है तो वही यात्रा जो भौतिकता से शुरू हुई थी अध्यात्म बन जाती है। आत्म, अध्यात्म, आत्म, इसके अतिरिक्त मुझे व्यक्तिगत तौर पर और ये कुछ भी मालूम नहीं देता है। तो मित्रों, आज मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूंगा। अब इसी को हम लोग अपने जीवन के बहुत ही व्यवहारिक रूप में कल समझने और जानने की कोशिश करेंगे। तो अब आप सबसे तब तक के लिए अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।